ઓમ શાંતિ. સભઈ આદરણીય પરમ શ્રદ્ધે મમતા દીદીજી, જો કે ઇન્દોર જોન સે મંડલા સેવા કેન્દ્ર સે હમારે બીચ પધારે હૈ. આપ સભી એક હાથ કે તાલી બજા કર સભી દીદીજી કા સ્વાગત કરે, અભિનંદન કરે. સ્વાગત હૈ દીદીજી આપકા. દીદીજી 50 વર્ષો સે સમર્પિત રૂપ સે સેવાએ દે રહે હૈ. 51 વર્ષ સે વો જ્ઞાન યોગ કા પ્રયોગ કરકે ફરિશ્તા સ્થિતિ હમ કૈસે બનાએ, આજ ઇસ સુંદર ટોપિક કો ક્લિયર કરેંગે. હમે ભી પ્રેરણા દેંગે, જો કી બાબા કા લક્ષ્ય હૈ, કૈસે હમ અપની ફરિશ્તા સ્થિતિ તક પહોંચે. તો દીદીજી કે સાનિધ્ય મેં આજ બહોત સુંદર ક્લાસ. દીદીજી ઇન્દોર ઝોન કી મંડલા સેવા કેન્દ્ર સે હૈ ઓર યુથ વિંગ કી ઝોનલ કોઓર્ડિનેટર એઝ્યુકેટિવ કમિટી મેમ્બર ભી હૈ. દીદીજી આજ બહોત સુંદર ટોપિક જો કે ન્યારી પ્યારી ફરિશ્તા સ્થિતિ સંપૂર્ણ સ્વરૂપ કા આહવાન, જો કે હમ સભી કા લક્ષ્ય હૈ. ઓર દીદીજી કે લીએ મેં બહોત એક કોટેશન મુજે યાદ આતી હૈ, દીદીજી કે સમ્માન મેં કહેના ચાહુંગી. આસમાન કા ફરિશ્તા બનકર આએ હૈ, જો કે હમ સભી કો ફરિશ્તે બનાને. આસમાન કા ફરિશ્તા બનકર આએ હૈ, મહેકતે ફૂલો કા નજારા બનકર આએ હૈ. દીદીજી આપકે સ્વાગત મેં સજી હૈ યે મહેફિલ, આપ હમારે દિલ કા સહારા રહેનુમા બનકર આએ હૈ. દીદીજી આપકા સ્વાગત હૈ. સ્વાગત હૈ ઓમ શાંતિ.
ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ. અભી સભી ઉસ પ્યારી અપની શાંત સ્વરૂપ સ્થિતિ મેં સ્થિત રહેકર પ્યારે બાબા કી યાદ મેં પ્યાર કી અનુભૂતિ કર રહે હોંગે. બહોત હી નશે કી ખુશી કી સ્થિતિ મેં તો સભી રહેતે હી હૈ, ક્યોંકી હમ સભી ભગવાન કે ગોદ કે પ્રેક્ટિકલ બચ્ચે બને હૈ. ઓર અભી ભગવાન કે ઘર કિતની કિતની પરિસ્થિતિઓ કો કિતની માયા કો પાર કરકે સ્નેહ કે વિમાન મેં ઉડ કરકે યહાં પહોંચે હોંગે. ઠીક હૈ ના? સભી એસે હી પ્યાર મેં વિમાન મેં બેઠ કર ખીચ કર પહોંચ ગયે ના? તો અપને આપ કો શાબાશી દે કે લૌકિક દુનિયા સે કેસે હમ દૂર અલૌકિક બાબા કે બચ્ચે ઇસ અલગ સે અલૌકિક દુનિયા મેં પહોંચ ગયે હૈ. યે હમ બ્રાહ્મણો કી એક અલૌકિક દુનિયા હૈ જિસકો લૌકિક દુનિયા નહીં જાનતી. હમારા યે બ્રાહ્મણ જીવન અલૌકિક નશે ઓર નિશાને કા યે ઈશ્વરીય બ્રાહ્મણ જીવન હૈ, લૌકિકતા સે પરે. ઓર પારલૌકિક નશા ઓર નિશાના ભવિષ્ય જન્મ કી પ્રાપ્તિ હૈ. તો જીતના હમ ઈશ્વરીય નશે મેં રહેતે હૈ વો નશા હી હમે અપને લક્ષ્ય તક કહો નિશાને તક કહો હમે પહોંચાતા હૈ. લેકિન નશા ઓર નિશાને કે સાથ નિશ્ચય ભી બહોત જરૂરી હૈ. સંપૂર્ણ નિશ્ચય કે આધાર સે હી હમ ઇસ બ્રાહ્મણ જીવન કે ઇસ ઈશ્વરીય જન્મ કે નશે મેં ખુશી મેં એક રસ અવસ્થા મેં રહે સકતે હૈ. इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, वही वैजयंती माला का मणका भी बनते हैं। तो संपूर्ण निश्चय ही हमें अपने नशे में स्थित करते हुए निशाने तक, लक्ष्य तक अपने पहुंचाता है। हम सभी का लक्ष्य क्या है? आज जो हम बाबा की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाबा के बच्चे बने हैं, स्टूडेंट भी बने हैं, बाबा हमें मनुष्य से देवता की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और संपूर्ण डिग्री है इसकी संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता। तो वो पढ़ाई अभी हम बाप से पढ़ रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य यही है, संपूर्णता को प्राप्त कर बाप समान कर्मातीत संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना। तो उसके लिए हमें कौन सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा? पुरुषार्थ तो हम सभी करते हैं, लेकिन बहुत सहज पुरुषार्थ। बाबा हमें कहते हैं संगम युग में सबसे सहज पुरुषार्थ वो कौन सा हमें करना है? सहज पुरुषार्थ क्या है? सहज पुरुषार्थ क्या होगा? क्योंकि बाबा से हमें बहुत प्यार भी है, निश्चय भी है, नशा भी है। तो जितना हम प्यार से के कारण बाबा के साथ अपने मन और बुद्धि को जोड़े रखते हैं, तो क्या होता है? सर्व से न्यारे बन जाते हैं और न्यारे ही प्यारे बनते हैं। तो हमें प्यारे बनने के लिए प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है, पुरुषार्थ क्या करना है? न्यारा बनने का। जैसे आज कोई संगठन होता है, संगठन से अगर कोई चीज अलग हो जाती है तो सबको उससे उसी की तरफ ध्यान जाता है। तो न्यारे बनने से प्यारे सोते ही बन जाते हैं। लौकिक में भी देखो, आज हमारे बच्चे साथ में रहते हैं, लेकिन जब वो पढ़ाई पढ़ने के लिए बाहर शहर में जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में, तो परिवार से न्यारे होकर अलग चले जाते हैं। तो आप महसूस करते होंगे कि सबसे ज्यादा प्यारे वो ही बच्चे आपको लगते हैं। बार बार आपका उन्हीं की तरफ ध्यान जाता है, प्यार जाता है, क्योंकि वो आपसे न्यारे हो गए हैं। तो हमें इस लौकिक दुनिया में रहते हुए भी अपने को उससे न्यारे रखना है, तभी हम बाप के प्यारे, विश्व के प्यारे बन सकेंगे। तो न्यारे बनने का पुरुषार्थ करना है, प्यारा बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है। पुरुषार्थ करना है न्यारे बनने का। तो न्यारे और प्यारी जो स्थिति है हमारी, वो हमारे में कैसे आए, वो हमें प्राप्त करनी है। तो हम ब्राह्मण जीवन में तो आ गए हैं, लेकिन कभी कभी बस हम उनको सहज ही रूप से जीवन जीने लगते हैं कि बाबा के बच्चे तो बन ही गए हैं, बाबा तो हमें सदैव ही याद रहता है, बाबा भी हमको याद करता है, हम तो उसके बच्चे ही हैं। जब पूछा जाता है योग अभ्यास, हम तो सदैव ही योग में रहते हैं, तो एकदम हल्के, वो भगवान है, हम बाबा बाबा कहकर उसको सहज न ले लें, लेकिन वो भगवान है, वो हमें पढ़ाने इतनी दूर से आते हैं, उसकी श्री श्री की श्रीमत ही हमारी पढ़ाई है। जितना हम उसको गहराई से लेंगे उतनी हम अनुभूति कर सकेंगे। तो इस ज्ञान मार्ग में हम चल तो रहे हैं, लेकिन ज्ञान हमारे अंदर कितना चल रहा है ये भी हमें स्वयं के अंदर चेकिंग करते रहना चाहिए और सदैव ही अपने जीवन में अपने आप को जागृत अवस्था में रखना है। आलस्य, अलबेलापन, सुस्ती, ये सब से दूर सदैव अपने आप को जागृत रखना है। अपने अंदर अपनी आत्मा की जो गुण हैं, जो शक्तियां हैं, उनको जागृत करके उनको यूज करते रहना है। माया के प्रभाव में कहो, माया के कारण हम अपने ओरिजिनल गुणों को ही भूल गए थे। माया के वशीभूत होकर माया के अवगुण और विकारों में फंस गए थे। लेकिन जब ज्ञान हमें मिला तो हमारा जीवन क्या था, पहले एक सूखे पेड़ की तरह था। लेकिन जब परमात्मा ने प्यार से हमारे जीवन रूपी बगिया को प्यार की बरसात से हरा भरा कर दिया, खुशहाल कर दिया, हरियाल कर दिया, फल फूल से संपन्न कर दिया, कितना ना हम अपने दिल से बाबा का बार 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 शुक्रिया अदा करें, करते ही रहते हैं शुक्रिया बाबा, न चाहते भी दिल से निकलता है, क्योंकि बाबा ने हमारे जीवन को बहुत खुशहाल कर दिया। और जो बाबा के प्यारे बच्चे हैं, जो बाबा से अपने मन बुद्धि को जोड़े रखते हैं और बाकी सबसे न्यारे योगी बच्चे, उनके ऊपर तो भगवान का प्यार बरसता ही रहता है, उमड़ता ही रहता है। जिनको बाबा कहते हैं कि ये मेरे योगी बच्चे ही इस लायक हैं जिनको मैं नैनों का नूर कहूँ, अपनी दिल रूपी डिब्बी में बिठा करके रखूँ, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। और हम बच्चे भी अनुभव करते हैं कि बाबा हमारे ही साथ है और हमें अपनी गोद में, अपनी दिल रूपी डिब्बी में सुरक्षित करके रखा हुआ है। तो ये भी सौभाग्य केवल योगी बच्चों को ही मिलता है। ऐसी ऊंची स्थिति हमें बनानी है अपनी और संपूर्णता को प्राप्त करना है। जैसे प्रकृति का एक पौधा होता है, वो पौधा पत्ता निकालता है, तो वो पौधा अपना पत्ता तो खुद ही निकालेगा ना, भी दूसरे उसको सहयोग देंगे, खाद देंगे, पानी देंगे, मिट्टी देंगे, सब सहयोग करेंगे, लेकिन पौधा अपना पत्ता खुद निकालेगा। तो हमें भी अपने भविष्य को, के जन्म को उज्जवल बनाने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था कहो, देवताई जीवन कहो, ऐसा भविष्य का उज्ज्वल प्राप्त करना है, तो हमें अपने आप के लिए खुद ही मेहनत करनी होगी। आज ब्रह्मा बाबा जिसके तन को शिव बाबा ने यूज किया, आधार लेकर हम सबका जीवन बनाया, तो हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने भी वही पुरुषार्थ किया, उनको भी करना पड़ा। तपस्या ही फल देती है, तपस्या करनी आवश्यक है। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा नहीं होते थे, तब बाबा रात को उठ उठ के अकेले तपस्या में लीन हो जाते थे। तो तपस्या जो ब्रह्मा बाप ने की, जो हमारी प्रेरणा स्त्रोत दादियों ने की, वो तपस्या हमें भी करनी होगी। सदैव अपने को जागृत रख के अपने अंदर की गुण शक्तियों को जागृत करने के बाद उसको यूज करते हुए चलना है। गुण शक्ति और नशा से जो संपन्न अवस्था होती है ना, वही फरिश्ता स्वरूप की अवस्था है। आज कोई भी कार्य हम करते हैं तो हम अगर अपने साथ धीरज, शांति और स्नेह, जो हमारे सेवक हैं, इनको साथ रहकर रख करके अपने कार्य करते हैं तो हमें जीवन में कभी असफलता मिल ही नहीं सकती। क्योंकि कोई भी कार्य के लिए बहुत शांत स्वरूप स्थिति चाहिए तो वो कार्य सफल होता, धीरज चाहिए होता है। कोई कोई ऐसी कार्य होते हैं जो जल्दी नहीं होते, धीरज का फल मीठा कहा जाता है, तो धीरज रख करके चलना पड़ता है। और स्नेह, ये तीनों हमारे सेवक हैं, इनको अगर हम सदैव साथ रखें तो कोई भी कार्य में असफलता ना होकर के हम सफल ही रहेंगे। सफलता का मंत्र सदैव स्वयं के साथ साथ औरों को भी देते रहेंगे। तो ये गुण, शक्ति और नशा आज हमने अपनी बड़ी दादियों में देखा, कितने गुणों को अपने जीवन में उन्होंने दिखाया और हमें पढ़ाया प्रैक्टिकल करके। शक्ति संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति को भी देखा और नशे की स्थिति, खुशी की स्थिति भी देखी, कैसी कैसी स्थिति परिस्थितियों को भी पार किया, लेकिन ईश्वरीय नशा कभी कम नहीं हुआ। सब नशों में नुकसान है लेकिन ईश्वरीय नशे में, नारायणी नशे में कोई भी नुकसान नहीं है। इसलिए हमें उस स्थिति को प्राप्त करके चलना है। आज हमारी न्यारी और प्यारी स्थिति हमें बनानी है, लेकिन वो न्यारी प्यारी बनेगी कैसे? हम देह से भी न्यारे हो जाएं, देह देह के संबंधियों से न्यारे, देह के पदार्थों से न्यारे, और सब तरफ से न्यारे होकर फिर तपस्वी बनकर तपस्या करें। अशरीरी विदेही अवस्था, बीच बीच में बिंदु रूप, बीज रूप स्थिति का अभ्यास भी जरूरी होता है। कहते हैं कि जब स्वामी महावीर जब जंगल में तपस्या करने गए थे तो उनका शरीर ही चिड़ियाघर बन गया था, लेकिन वो तपस्या में इतने लीन थे, उनके पाँव में पूरा सांप लिपट जाते थे तो भी उन्हें पता नहीं चलता था, ऐसी तपस्या करते थे। तो बाबा तो हमें कोई जंगल में जाने की या ऐसी कोई कठिन तपस्या नहीं सिखाते। हमारी तपस्या क्या है? सिर्फ इस देह से न्यारे रहना। और देह हम ना लेकर आए थे, ना हमें देह लेकर के जाना है, ना देह के संबंधी देहिक पदार्थ लेकर आए थे, ना उन संबंधियों को देहिक पदार्थों को साथ लेकर जाना है, ना लाए थे ना ले जाना है। तो जो साथ ले ही नहीं जाना है तो हम उसमें अपना टाइम वेस्ट क्यों करें? हमें तो अपने संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करना है, तो हमें एक ही धुन लगा लेनी है, संपूर्णता को प्राप्त करना है, संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बनना है, अपनी वो संपूर्ण स्थिति, संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करें। जैसे देखो, किसी का आवाहन जब किया जाता है तो वही वो स्मृति में रहता है, जिसका आप आवाहन करते हैं वही वही आपके दिमाग में, वही आपकी स्मृति में रहता है। तो जब हम अगर ये अभ्यास करते हैं अपने संपूर्ण स्वरूप, संपूर्ण शक्ति का आवाहन करते रहें, उसको बुलाते रहें, उस अवस्था को प्राप्त करने में लगे रहें, लग लगे की तरह लग जाएं, धुन लगा लें, तो क्या होगा? वही वो स्मृति में रहेगा। तो फिर हमारी अवस्था ऊपर नीचे नहीं होगी। नहीं तो आज क्या होता है, कभी बहुत ऊंची स्थिति, कभी नीचे हो जाते हैं, कभी बहुत खुशी, कभी थोड़ा उदासी आ जाती है। वो ना हो, एक रस अवस्था, सब रसों से पार। ये संसार में कोई रस नहीं है, संसार असार हो गया है, और इस संसार को स्वार्थी और मतलबी दुनिया भी कहा जाता है। तो हम न्यारे रह क्यों नहीं पाते हैं? इसका भी कारण है कि हम न्यारेपन को तो छोड़ो, लेकिन हम लगाव में आ जाते हैं। देह देह के संबंधियों से, अपनी देह से, देह के पदार्थों से, देह के संबंधियों के लगाव में आते हैं। और दूसरी बात, लगाव में आते भी हैं तो कोई स्नेह के कारण लगाव नहीं होता, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। कोई स्नेह के कारण लगाव में नहीं आते, लेकिन स्वार्थ के कारण लगाव में आते, कोई मतलब से लगाव। तो स्वार्थ के कारण लगाव हुआ और लगाव के कारण क्या हुआ? हम न्यारे नहीं बन सकते। और जब न्यारे नहीं बन सकते तो भगवान के और सर्व के प्यारे कैसे बनेंगे? जिससे प्यार होता है उससे जुड़ना होता है, और सर्व से न्यारे। अगर हम प्यारे बनने के लिए प्यारे बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो कोई भगवान के दिल तख्त पर नहीं चढ़ेंगे, लेकिन न्यारे रह करके प्यारे बनेंगे तो हम दिल तख्त के नजदीक पहुंचेंगे। तो हमें बहुत स्नेह और प्यार से, स्वार्थ से नहीं। स्वार्थ का अगर आप संधि विच्छेद करो तो स्व धन रथ, स्वार्थ रथ माना ये शरीर। तो जब हम इस रथ को स्वाहा करेंगे, माना इस रथ देह के अभिमान को, देह देह के संबंधियों के लगाव को जब हम स्वाहा करेंगे, विदेही अवस्था में रहेंगे, अशरीरी स्थिति में आएंगे, तब हमारा पुरुषार्थ तीव्र होगा, तेज होगा। आप सभी को अनुभव भी होगा कि कई परिस्थितियां तो हमारे सामने आती ही हैं, लेकिन इस देह की हारी बीमारी कर्म भोग की भी परिस्थितियां बहुत वर्तमान समय आ रही हैं। और कर्म योगी के लिए कर्म भोग चुकतु करना कठिन नहीं होना चाहिए, वो दुनिया वालों के लिए कठिन है। थोड़ा भी अगर सर्दी जुखाम, थोड़ा भी बुखार हो जाए तो वो बेचैन हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन अपने ज्ञान में चलने वाली बड़ी बड़ी, बड़े बड़े जो हमारे वरिष्ठ भाई बहन हैं, हमारे सामने हमारी दादियां इतने इतने वर्ष अपने शरीर की आयु को चलाए, इतनी बीमारियों को, कर्म भोग को प्राप्त किया, मतलब उनका सामना किया, लेकिन किस प्रकार एक सहज कर्म योग से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना प्रैक्टिकल करके सिखाया, वो सभी ने अपनी आंखों से देखा और आज भी देख रहे हैं। भले आज दादियां नहीं हैं, लेकिन आज हमारी बड़ी बड़ी दीदियां तो हैं। कईयों को कई का पता ही नहीं है कैसी कैसी बीमारियां, कैसे कैसे कर्म भोग आते हैं, लेकिन कर्म योग की स्थिति, फरिश्तापन की स्थिति वो कर्म भोग को चुकतु करा देती है। उसमें भी विदेही अवस्था, अशरीरी अवस्था, हर प्रकार की स्थिति को पार करने में हमारी सहयोगी बनती है। आप महसूस करते होंगे या करना कभी, कितनी भी कड़ी बीमारी हो आपकी, लेकिन उस समय आप दवाई तो चलो लो, लेकिन अशरीरी ये प्रैक्टिस करो। शरीर होते हुए भी एकदम छोड़ दो उसको, आखिर तो छोड़ना ही है। टाइट कपड़े पहने होते हैं तो उतारने में तकलीफ होती है, और लूज होते हैं तो उसको सहज उतार सकते हैं। तो हम शरीर को लेकर चल रहे हैं, ये तो हमें पार्ट बजाने के लिए मिला है, लेकिन हम उसको टाइटनेस में यूज ना करें। इसलिए देखो ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, कितना अभ्यास किया ब्रह्मा बाबा ने। यशोदा आत्मा, ये राधा आत्मा, ये राधे आत्मा, ये वो आत्मा, आत्मा आत्मा कितना पाठ पक्का किया। हम कहते हैं हमको तो पहला पाठ, पहला कोर्स याद है, हम आत्मा है। केवल एक कहना सुनना और एक स्वरूप का अनुभव करना, उसमें बहुत अंतर है, और उसी में टिक करके कार्य करना। अगर हम ये अभ्यास कर लेंगे तो आपका शरीर आपको कोई तकलीफ नहीं देगा, हल्के फूल जैसे आप अपने आप को अनुभव करेंगे। परिस्थिति कैसी भी आ जाए, कोई भी आ जाए, किसी भी प्रकार की आ जाए, केवल कर्म भोग की बात नहीं है, कोई भी परिस्थिति आती है तो अगर हम बाबा को साथ लेकर के और अपनी न्यारी प्यारी स्थिति में, विदेही अवस्था में स्थित होकर के तुरंत अभ्यास करना शुरू करते हैं तो तुरंत उसका फल हमें महसूस होता है। तो संगम युग ये समय हमें मिला है 5000 वर्ष में एक बार। सिर्फ हमें पुरुषार्थ करना होता है, अपने भविष्य जीवन रूपी बिल्डिंग के निर्माण करने का, 21 जन्म को अपने श्रेष्ठ बनाने का, केवल एक जन्म। और अगर इस संगम युग के एक जन्म को अगर हमने एकानामी से नहीं चलाया तो उसकी रिजल्ट फिर खराब होती है। आज दादियां एक नामी, एकानामी, एकांतवासी, एक व्रत्ता, एकता में चल करके एक मिसाल बनी और हमें प्रेरणा देकर गई कि हमें भी ऐसा ही बनना है। जब तक हम अपने आप को एकांतवासी बनकर इस ज्ञान मानसरोवर के अंदर मनन चिंतन करते हुए बाबा से प्राप्त ज्ञान को अपना बनाने में नहीं लगेंगे, अपने अंदर नहीं चला पाएंगे और अपने स्वरूप को नहीं बना पाएंगे। किसी से कोई चीज हमने ली है उसको हमें अपना बनाकर रखना होता है। ज्ञान तो भगवान ने हमें दिया, ज्ञान तो हमने सुना, लेकिन वो खजाना हमारा अपना कब बनता है? जब हम उसको मनन चिंतन करके अपने अंदर तक उतारते हैं, उसके अर्थ को, उसके भावार्थ को उसको समझकर समझदारी से चलते हैं। तो कहते ना ये ज्ञानी है, ज्ञानी माना क्या, समझ, समझदार, समझदार माना हर प्रकार की समझ रखने वाला, चाहे वो लौकिक हो, चाहे वो अलौकिक हो, चाहे वो स्थिति हो, चाहे वो परिस्थिति हो, चाहे वो कर्म भोग हो, चाहे कुछ भी हो, समझ, समझ से चलने वाले, वो समझदारी बाबा हमें सिखाता है, क्योंकि समझदार बना रहा है वो हमें। देवी देवताएं मैनर्स वाले होते हैं, देवी मैनर्स होते हैं, समझदार होते हैं। बाबा कहते ना तुम बेसमझ बना दिया माया ने, माया ने बेसमझ बना दिया, लेकिन बाबा हमें समझदार बना रहे हैं। तो कोई भी बात को अगर हम समझ करके अर्थ को और फिर चलते हैं तो कहीं भी मूंझ नहीं होती है। और ये जो संगम युगी हमारा जीवन है, बड़े मौजों से, आनंद से निकलता है। इसलिए कहते हैं ये संगम युग क्या है, मौजों का युग है। ये संगम युग क्या है, खुशी का युग है। खुशी का भंडार है हमारे पास, खुशी का खजाना है हमारे पास और दुनिया वालों के पास, सबके पास सब कुछ होगा, धन महल मोटर कार सब होगी, लेकिन खुशी, खुशी जीवन में नहीं है तो वो जीवन ही किस काम का। हम बाबा के बच्चों के पास अगर कुछ नहीं भी है पर खुशी तो है, खुशी का खजाना तो भरपूर है कि नहीं भाई, सबके पास खुशी है, खुशी का खजाना भरपूर है। सोचो हम कितने भाग्यशाली हैं। खुशी के लिए लोग आज पिकनिक में जा रहे हैं, कहाँ कहाँ स्थानों पर जा रहे हैं, दूर दूर खर्चा करने जा रहे हैं। किस लिए जाते हैं? खुशी प्राप्त हो जाए। त्योहार मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, खुशी के लिए मनाते हैं, उत्साह आ जाए इसलिए मनाते हैं। और हम बच्चे तो सदैव ही खुशी में रहते हैं। बाबा मिला तो सब कुछ मिला, खुशी की चाबी मिल गई, और क्या चाहिए। तो हमें पुरुषार्थ केवल सर्व से न्यारे प्यारे रहने का करना है। सर्व से माना व्यर्थ से भी किनारा करना है, नेगेटिविटी, व्यर्थ, इन सब से दूर। वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, सबसे न्यारे। कोई कुछ भी करे, क्या भी करे, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे कैसे चलना है, अपने निशाने तक पहुंचना है, उस नशे में रहकर सर्व से न्यारे और बाप के प्यारे इस स्थिति में आना है। तब हमारी फरिश्ता स्थिति बनेगी। फरिश्ता अर्थात लाइट, प्रकाशमान शरीर वाला। फरिश्ता अर्थात जिसका एक बाप से रिश्ता, सर्व रिश्ते बाप से अनुभव करने वाला। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव इस पांच तत्वों के आकर्षण से परे ऊंचा हो, कहीं फंसने वाला नहीं। बाकी कहीं जो दुनिया में कोई फंसा है, कोई संकट है, वहां वो फरिश्ता पहुंच जाता है। इसलिए लोगों को महसूस होता है कि मुझे आज कोई फरिश्ता मिल गया, जो मेरा जीवन बच गया। तो फरिश्ता स्थिति अंतःवाहक शरीर के द्वारा सर्व के पास पहुंचकर और प्राप्ति कराने वाली होती है। तो हमें अपने जीवन को लक्ष्य सामने रखते हुए, लक्षण धारण करते हुए चलना है। हम अपने लक्ष्य और निशाने तक तभी पहुंच सकते हैं जब सदैव अपने आप को चार्ज रखें। बिना चार्ज के हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप महसूस करते हैं ना, अपना एक छोटा सा मोबाइल भी, आप कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसको चार्ज में लगाते हैं, भी फुल चार्ज होना चाहिए। और फिर ये भी डर रहता है कहीं डिस्चार्ज ना हो जाए, तो चार्जर भी साथ में लेकर जाते हैं कि नहीं, भी निश्चिंत रहते हैं चार्जर हमारे पास है, नहीं तो कहीं डिस्चार्ज ना हो जाए। तो ऐसे ही हमें अपने जीवन को सदैव ही चार्ज रखना है। और एक बार बाबा ने 71 की अव्यक्त वाणी में बताया था कि चार्ज तीन प्रकार का, इसका तीन मतलब होता है चार्ज का। एक होता है अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करके और चलना। एक होता है चार्ज माना ड्यूटी निभाना, नहीं कहते फलाने को ये चार्ज दिया गया है, ये ड्यूटी दी गई है। तो एक है चार्ज बैटरी को करना, एक है चार्ज माना ड्यूटी निभाना, अपना संभालना, चार्ज संभालना। और तीसरा होता है चार्ज दोष को भी कहते हैं, तो दोष किसी का निकालना। जैसे धर्मराजपुरी में जब सजा मिलेगी ना, तो पहले दोष उसका चार्ज जो है, दोष उसको दिखाएंगे पहले, तुमने कहां कहां क्या क्या गलती की, उसको चेक बता करके उसके बाद अब खाओ सजा, धर्मराजपुरी की सजा मिलेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप को हर प्रकार से चार्ज रखो, नहीं तो भिन्न भिन्न प्रकार के चार्जेस लग जाएंगे। धर्मराजपुरी में भी चार्ज देना पड़ेगा, अनेक प्रकार के चार्जेस लग जाएंगे। इसलिए कोई प्रकार का चार्ज न लगे और हम सदैव चार्ज रहें, ये हमें अभ्यास करना है। आज ब्रह्मा बाबा, बड़ी दादियां, सब बाप को फॉलो करके उस अवस्था को प्राप्त की हैं। सभी को मालूम है कि जैसे ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्वरूप कहो, संपूर्ण मूरत कहो, वतन में हैं, जो संदेशियों ने बाबा को बताया और बाबा तपस्या में लीन हुए और पुरुषार्थ करने लगे, तो हम कभी ये ना भूलें कि हमारी भी तो संपूर्ण मूर्ति, हमारा भी वो संपूर्ण स्वरूप, हमारा भी वो संपूर्ण अवस्था का जो चित्र है वो ऊपर है, उसको मुझे प्राप्त करना है। तो बस वो धुन लगानी पड़ेगी, और जिस चीज की धुन लग जाती है उसी में लगे रहने से हम फिर सब तरफ से न्यारे हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने हमें एक चित्र दे रखा है, न्यारे और प्यारे रहने का चित्र कौन सा है बताएंगे? न्यारे और प्यारे हम दूसरों को उदाहरण देते हैं, कौन सा चित्र है वो? कौन सा चित्र है? जोर से बोलो। कमल पुष्प। कमल पुष्प का उदाहरण देते हैं ना सबको, कि गंदी कीचड़ में रहते हुए कितने बड़े परिवार के बीच में कमल के गट्टे हैं, पत्ते हैं, जड़ है, कीचड़ है, सब में रहते हुए भी कैसे रहता है न्यारा, और कीचड़ का छीटा भी नहीं लगता उसके। तो वो चित्र किसका है? हमारा है ना। उस चित्र से हम अपने चरित्र को बनाते हैं, उसको हम सदैव याद रखें। केवल दूसरों को उदाहरण देने का नहीं है, लेकिन हम खुद को भी सब बातों से न्यारे और प्यारे रखें। भले ही संसार के कीचड़ में हम रह रहे हैं, ये संसार तो मायावी संसार हो गया है, सार इसमें कुछ रहा नहीं, असार संसार बन गया है, स्वार्थी हो गया है, नेगेटिव हो गया है, जो भी है, लेकिन इसमें रहते हुए भी सांसारिक बातों से, तेरे मेरे इधर उधर की व्यर्थ बातों से, नेगेटिविटी से, सब प्रकार से अपने को न्यारा बनाओ। ऐसा न्यारा कि हम कहीं फंसे नहीं। जो मायावी दुनिया का आकर्षण है और ईश्वरीय आकर्षण है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो ईश्वरीय आकर्षण में जो आकर्षित हो गया, ईश्वरीय रस जिसने पी लिया, उसको मायावी आकर्षण कभी आकर्षित कर ही नहीं सकता, वो मायावी रस की तरफ खींचेगा ही नहीं। तो ये हमारा चित्र है, हमें कमल के समान अपने जीवन को न्यारा और प्यारा बनाना है। हर कर्म करते हुए, देखना, सुनना, बोलना, कोई भी कर्म कर रहे हैं, एक फरिश्ता नजर आए जो सर्व से अलौकिक, सारी लौकिक दुनिया से न्यारे और प्यारे नजर आए। कर्म दुनिया में भी मनुष्य करते हैं, कर्म क्षेत्र पर कर्म से न्यारा तो कोई हो ही नहीं सकता है, पर कर्म करते हुए कर्मातीत बनना है, माना कर्म से अतीत की स्टेज। कर्म हमें बांधे नहीं, कर्म करो परंतु कर्मातीत, उसके बंधन से न्यारे। कोई भी कर्म हमें बांध नहीं सकता। गोप गोपियों को कोई बांध सकता था क्या? मुरली की धुन बजते ही क्या हुआ, गोप गोपियां भागते थे कि कोई बांध देता था? वो बंधन में बांध ही नहीं सकता। हम सब गोप गोपियां हैं, मुरली की धुन बजी और दौड़े, है ना? इसलिए ये भी याद रखो, कमल पुष्प याद रखो, जो बातें हम इतने समय से सुनते आए हैं वो याद रखो कि ये हमारा ही गायन है, हम ही वो गोप गोपियां हैं। तो क्या होगा, बाबा की मुरली की क्लास, अमृत वेले की जो धुन बजती है क्लास में, वो कभी मिस होगी? होगी कभी नहीं। तो ऐसी मुरली की धुन सुनने के लिए हम बाबा के पास आते हैं। आज कमल का गायन तो इसलिए देवियों के ऊपर लगाया है, कहते हैं कमल आसन, कमल हस्त, कमल मुख, कमल नयन, हर अंग की तुलना कमल से की गई है। हर अंग को हमें कमल के समान पवित्र, न्यारा, प्यारा, पवित्र बनाना है। तो हर अंग को बाबा की याद में और श्रेष्ठ कर्मों को लगाएंगे, कर्मों में लगाएंगे, तभी तो हमारी कर्मेंद्रियां, हर कर्म हर अंग शीतल होगा। इसलिए कहते हैं योगी का अंग अंग शीतल होता है, योगी का अंग अंग पवित्र होता है, तो उसको पवित्र बनाना पड़ता है। हम तो सोचते हैं हम सिर्फ पवित्र बन गए, बाबा की कितनी गहरी पवित्रता की परिभाषा है। अंग अंग को पवित्र अगर हमने नहीं बनाया तो हम देवता स्वरूप में कैसे आएंगे। हर अंग का गायन है, हर कर्म का कीर्तन है, महिमा है, वो किसकी है, हम बच्चों की तो है ना। तो हमें इस संसार में रहते हुए भी कैसे रहना है, जैसे आज देखो हम कहीं जाते हैं तो वोटिंग करते हैं, है ना, पानी में नाव चलती है, बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो नाव जब पानी में चलती है बहुत मजा आता है, लेकिन चलते चलते अगर पानी थोड़ा भी नाव में आ गया तो नैया डूब जाएगी ना। ऐसे हमारी ये जीवन रूपी नैया, इस संसार भव सागर में चले कोई हर्जा नहीं, लेकिन सांसारिक व्यर्थ की बातें, नेगेटिविटी तेरी मेरी इधर उधर की, अगर ये कचरा ये सब हमारे अंदर अगर आया तो हमारी जीवन रूपी नैया डूब जाएगी, ये ना भूलें। इसलिए ये बाबा ने जो हमें संगम युगी जीवन दिया है, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली हैं जो भगवान की गोद में पल रहे हैं और अपने भविष्य 21 जन्म को श्रेष्ठ बनाने की कलम खुद भगवान ने हमारे हाथ में ही दे दी है। सोचो ऐसा भाग्य कभी हमने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन हम सोचना बोलना और करना तीनों को एक समान नहीं कर पाते हैं। कभी हम बोल बहुत देते हैं, सोच बहुत लेते हैं, कर नहीं पाते हैं। हमें प्रैक्टिकल करना है और आज सब हमारे जीवन को प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं। सुनना सुनाना तो भक्ति मार्ग में बहुत हुआ है, लेकिन अनुभूतियां अपने जीवन में आए और अपने अनुभव से दूसरों को अनुभव कराएं, ये आज चाहिए। इसलिए जो भी आता है आज बाबा के घर तो क्या कहते हैं, हमें तो मेडिटेशन सीखना है, हमें तो मेडिटेशन सीखना है, यही कहते हैं ना, क्योंकि अनुभव करना चाहते हैं। बाकी तो भक्ति मार्ग में बहुत शास्त्र सुने, बहुत बातें सुनी, बहुत ज्ञान सुना, कमी थोड़ी है, लेकिन अनुभव चाहते। तो बाबा के बच्चे तो हर कर्म करते हुए अनुभव करते हैं, हर परिस्थिति में अनुभव करते हैं कैसे बाबा हमारे साथ है। इस परिस्थिति में, इस बात में, इस समय पर बाबा ने मुझे ये अनुभव कराया। आज बाबा मेरे साथ नहीं होता तो क्या होता, हर पल ये अनुभव होता है। और बाबा ऐसा हमें मिला जो हर समय अपने साथ खड़ा रहता है, उसने गारंटी की है मैं अपने साथ लेके जाऊंगा, बच्चों साथ रहेंगे साथ चलेंगे। तो बाबा जब यहां से अव्यक्त हुए तो कहा बाबा आप छोड़ के चले गए, आपने तो वायदा किया था साथ चलेंगे, तो बाबा ने कहा नहीं मैं तो अभी भी हूँ साथ, वतन में आओ, बाबा ने बेडरूम बना रखा है, जब थक जाओ तब कहां आओ, बेडरूम में आ जाओ। शरीर थकता है तो कहाँ जाते हैं, शरीर को अपने बेडरूम में ले जाते हैं। तो ऐसे आत्मा की थकान के समय कहाँ जाते हो, जाते हैं कि नहीं, सभी हमारा बेडरूम कहाँ है, वतन। बाबा हमें बुलाता आ जाओ वतन में आ जाओ बच्चे, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बाबा हमें छोड़कर नहीं जाएगा, वो वतन में हमारा इंतजार कर रहा है, वादा है साथ चलेंगे, परमधाम का गेट नहीं खुला है। तो हमें भी बाबा के समान बनकर के ही बाप के पास जाना है, साथ साथ साथी बनकर जाना है। बाकी बराती तो बहुत होंगे, घराती बराती, हमें तो साथी बनकर जाना है। ना धर्मराज की सजा भी नहीं खाना, बच्चे बने हैं तो तो क्यों ना हम अपने आप को हर बात में चार्ज रखें, जागृत रखें, एक्टिव रहें, अलर्ट रहें। कभी भी किसी भी बात में देखो, कभी कोई बाबा थे ना साकार में, किसी को उदासी आ जाती थी तो बाबा क्या कहता था? बाबा को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। रोने वाला और उदासी सुस्ती वाला बाबा को पसंद नहीं था। तो उदासी आई तो बाबा कहता, अरे तुमको क्या दासी बनना है? उदासी माना दास दासी, हमें उदास नहीं रहना है। कभी भी परिस्थिति कितनी भी उल्टी सुलटी आ जाए, सारे क्यों ना विपरीत हो जाए। ब्रह्मा बाबा तो अकेले ही था, दुनिया एक तरफ थी और परिवार भी कोई साथ नहीं थे, बच्चे भी विरोधी थे, लेकिन बाबा कभी भी उदास नहीं हुआ। दादियों के सामने कैसी कैसी परिस्थितियां आई, कभी उदास नहीं हुई। हमें तो वही सीखना है, कैसी भी परिस्थितियां आए। हम कभी कभी देखते हैं कि बाबा कोई दोष देने लगते हैं कि हम तो बाबा के बच्चे हैं, फिर भी बाबा हमारे लिए ऐसा करता है वैसा करता है। कभी नहीं, संगम पर बहुत अच्छा अच्छा बोलना चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे संकल्प करने चाहिए। पूरा करने वाला अच्छे को बाबा बैठा है, ये बाबा ने कहा हुआ है कि जिसने श्रेष्ठ संकल्प किए हैं उसका पूरा मैं करूंगा, और जो खराब संकल्प नीचे संकल्प करता है उसको मैं नहीं पूरा करता, वो माया करेगी। तो संगम युग पर कभी कभी हम मजाक में, कभी कभी ऐसे ही हल्के संकल्प कर लेते हैं, नहीं ना अपने आप को कभी साधारण समझो। हम साधारण नहीं हैं, रहो साधारण। कर्म जैसे और सब करते हैं वैसे करो, छोटे से छोटा कर्म भी करो। ऐसे नहीं कि हम बहुत ऊंचे हो गए, ज्ञानी हो गए, महान हो गए तो हम ऊंचे ही कर्म करें। दुनिया भी जो भी स्थूल कर्म करने पड़ते हैं, घर गृहस्थी के लेकर के सब कुछ हमें करना है, लेकिन कर्म करते हुए अपनी साधारण स्थिति नहीं दिखाओ किसी को। आज ब्रह्मा बाबा मुरली सुनने के बाद, सुनाने के बाद ब्रह्मा बाबा सीधा कहां जाते थे? मुरली की क्लास पूरी होने के बाद ब्रह्मा बाबा का क्या रूटीन था मालूम है? ब्रह्मा बाबा कहां जाते थे? सीधा सब्जी काटने बैठते थे सेवा में। तो मालूम है ना, एक बार कोई बाबा से मिलने के लिए आया था, बाबा सब्जी काट रहे थे, बाबा का टाइम सब्जी काटने का था। तो बाबा से कहा, बाबा कोई बहुत अच्छा बाबा का बच्चा बाबा आपसे मिलने आया है। तो बाबा ने कहा, उसको यहीं बुला लो। तो बच्चों को लग रहा था, भी कैसे बुला लें, बाबा ऐसे सब्जी काट रहे हैं, वो तो बड़ी भावना से बाबा से मिलने आया और बाबा ऐसे बैठे हैं और सब्जी काट रहे हैं। तो बाबा से कहा, नहीं बाबा आप चलो ना वहां मिल। तो बोले, नहीं नहीं यहीं ले आओ, बच्चा है ना, ले आओ बच्चे को, यहीं ले आओ। इसीलिए बाबा ने बोला, और वो आ गए लेकर। जैसे ही वो आया, बाबा एक झलक दिखा और उसको तो विष्णु का साक्षात्कार हो गया। बाबा से कई साक्षात्कार, बाबा सब्जी काट रहे हैं और बाबा से साक्षात्कार हो गया। तो कोई भी हम घर गृहस्थी का भी कार्य साधारण से साधारण क्यों ना करें, लेकिन स्थिति हमारी साधारण नहीं होनी चाहिए। हम अपनी स्थिति के द्वारा कर्म करते हुए फरिश्ता नजर आए, देखने वाले, बोलने में, देखने में, चलने में, सोने में भी फरिश्ता अनुभव होना चाहिए। फरिश्ता सो रहा है, सतो प्रधान। दादियां कितनी स्टेज बताती हैं नींद की, कितनी स्टेज बताती हैं, सतो रजो तमो। सोना भी क्या है, ब्राह्मणों को कैसे सोना चाहिए सतो प्रधान अवस्था में। तो फरिश्ता माना क्या? देखने में, कर्म करने में, सोने में, बोलने में, चलने में, हर एक में फरिश्ता अनुभव। फरिश्ता माना लाइट, हल्का, कोई बोझ नहीं। उसने सारे बोझ भगवान को दे दिए और भगवान खुद कह रहा है हम बाबा, हम बच्चों को, कि जब मैं खुद तुम्हें ऑफर कर रहा हूं, सारे बोझ मुझे दे दो और हल्के हो जाओ। तो क्यों हम अपने सिर पर बोझ रखें? बोझ की गठरी हम बाबा को क्यों न दे दें? लेने वाला जब ले रहा है तो इसलिए फरिश्ता स्थिति प्राप्त करना है, संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करते रहना है और धुन लगा करके रखना है और अपनी स्थिति बहुत बहुत ऊंची स्थिति बना करके रखना है। साधारण होते हुए भी स्थिति ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि हम सब ब्राह्मणों की प्रिय चीज कौन सी है? हम सभी ब्राह्मणों की सबसे प्रिय चीज कौन सी है? अपनी अवस्था, अपनी स्थिति। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी अवस्था को कैसी बनाओ? अचल, अडोल, एक रस, कभी हलचल में नहीं आओ, डामाडोल स्थिति कभी नहीं बनाओ। और दुनिया में तो क्या है, डिप्रेशन वाली स्थिति है, डामाडोल वाली तो है ही, क्या डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ तो बाबा के, हम भगवान के सिलेक्टेड बच्चे बैठे हैं, बाबा ने हमें इस सबसे दूर न्यारे और प्यारे अलौकिक बनाया है। तो लौकिक दुनिया में रहते हुए भी हर कर्म में अलौकिक माना, लौकिक दुनिया से एकदम हर कर्म में न्यारे, अलग, एक विचित्र अनुभव हम औरों को करा सकें। तो अलौकिक का अर्थ होता है विचित्र, सबसे न्यारे, सबसे अलग हम बाबा के बच्चे। तो देखते ही हमें लोग कहते हैं, अरे ये तो ब्रह्मा कुमार कुमारी है ना, इतना तो बाबा ने हम बच्चों को इस लायक बनाया है। हम बच्चों के द्वारा ही तो हमें बाप को प्रत्यक्ष करना है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी का ताज बाबा ने हमें पहनाया है। बच्चों को आगे रखा बाबा ने हमेशा, और बच्चों को ही कहा है कि मेरे बच्चे आगे होकर के और बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। कितनी उम्मीदों को हम बच्चों के आगे रखा है बाबा की, हम बच्चों से कितनी आश है, कितनी उम्मीद है कि ये मेरे साधारण बच्चे, ये जो है मुझे प्रत्यक्ष करेंगे। भगवान हमें कह रहा है कि मेरे बच्चे मुझे प्रत्यक्ष करेंगे, कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। तो हम भी तो उस जिम्मेवारी के ताज को संभाल करके रखें और याद रखें, कम से कम स्मृति में रखें, तो हमारी स्थिति कभी डामाडोल नहीं होगी। हम अपनी स्थिति और अवस्था, जो ब्राह्मणों की प्रिय चीज है, उसे संभाल करके रख सकेंगे। तो हमारा सोचना, हमारा बोलना और हमारा करना, इन तीनों को समान करना है, उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। जो हम सोचते हैं अच्छा सोचें, वही बोलें और वही कर्म करें, क्योंकि अच्छा सोचकर जो हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं वो बाबा हमें अवश्य ही पूरा करके देता है। कभी हम कहते हैं कभी कभी, और इतना ऊंचा हम श्रेष्ठ संकल्प तो कर रहे हैं पर पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा, तो फिर उसको डाउन कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, सिर्फ हमें संकल्प ही करना है। क्योंकि हमने अभी तक क्या सुना है कि ब्रह्मा के संकल्प से ब्रह्मा ने सृष्टि रची थी, तो हम सभी ब्रह्मा के बच्चे, सभी ब्रह्मावत्स हैं। हमें अपने श्रेष्ठ संकल्पों से अपनी सृष्टि रचनी है, अपने 21 जन्म भविष्य को उज्जवल बनाना है। तो हमें अपने संकल्पों को कितना श्रेष्ठ और कितना ऊंच बनाना होगा, और भगवान तो हमारे साथ है ही है। श्रेष्ठ संकल्प ही तो सिर्फ करना है, पूरा तो वो करेगा, उसमें भी हम कभी कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं। हमें कभी भी अपने आप को नीचे संकल्पों में, नेगेटिव संकल्पों में, व्यर्थ संकल्पों में, निरर्थक संकल्पों में हमें कभी भी अपने आप को नहीं रखना है। सदा ऊंचे श्रेष्ठ संकल्पों के धनी बनकर चलना है, संकल्प से अपने भविष्य की जीवन की सृष्टि का निर्माण करना है। इसलिए हम जो जो सुनते आए हैं वो सब का गायन इस संगम युग का है। 5000 वर्ष में सिर्फ एक बार ऐसा प्यारा संगम युग, बाबा मिलन का युग, खुशी का युग, मौज मनाने का युग कहें, आनंद खुशी का युग कहें, वो हमें प्राप्त होता है। तो पारलौकिक नशा और निशाना जो भविष्य जन्म के लिए प्राप्त हुआ है, वो हमें उस नशे में स्थित रख करके फिर इस दुनिया में रहते हुए ऐसे न्यारे प्यारे सबसे चलना है जो सभी विश्व के भी प्यारे बन जाएं। आज हमारी बड़ी दादी थी, वो विश्व की दादी बन गई थी। सारे विश्व उनको अपनी दादी समझता था, तो विश्व की प्यारी बनी ना। और ऐसा उन्होंने पुरुषार्थ किया, एक दादी नहीं लेकिन सभी दादियां कैसे निश्चय बुद्धि विजयंती बनकर वैजयंती माला का मणका बनी, एक एक करके हमने प्रैक्टिकल देखा और वैजयंती माला तैयार हो गई। सामने देखते देखते दादियां कर्मातीत बन गई, बहुत कुछ सिखा करके, बहुत कुछ शिक्षाएं दे करके, बहुत कुछ श्रृंगार करके, औरों को देने के लिए बहुतों को तैयार करके चली गईं। तो कितना ना हम दिल से उन दादियों को महसूस करते हैं कि आज भी वो वतन से दूर बैठे भी महसूस कराती हैं कि हम साथ हैं, हम कहीं गए नहीं हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। और उस साथ का अनुभव सर्व ब्राह्मण आत्माएं करती भी हैं कि बाबा हमारे साथ हैं, दादियां हमारे साथ हैं। अनुभव करते हुए उसी प्रमाण अपने जीवन रूपी गाड़ी को आगे चला रहे हैं। तो बहुत सहज जीवन रूपी गाड़ी का पहिया बाबा ने हमें दिया है, बहुत सहज पुरुषार्थ भी सिखा दिया है कि केवल जो मैं तुम्हें पढ़ाई पढ़ा रहा हूं, श्री श्री की श्रीमत, उस श्रीमत रूपी पहिए पर अपनी जीवन रूपी गाड़ी को सेट करो, वो चलती रहेगी। बस मन और बुद्धि को कहीं नेगेटिव की तरफ जाने मत दो, कभी पटरी से खसकने नहीं दो। ट्रेन पटरी पर चलती रहती है तो कोई खतरा नहीं है, पटरी से उतरेगी तो एक्सीडेंट का, दुर्घटना का खतरा है। हम अपनी जीवन रूपी गाड़ी श्रीमत की पटरी पर एक बार सेट करके चलाते रहेंगे तो माया का कोई भी एक्सीडेंट का खर्चा नहीं, खतरा है ही नहीं। लेकिन अगर पटरी से उसको उतार दिया या पटरी से अलग हो गई तो फिर खतरा है। तो सिर्फ हमें निश्चय बुद्धि जो आत्मा होती है उसके लिए सब कुछ सहज होता है। बाप को पहचान लिया, भगवान को पहचान लिया, उसके बन गए। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती, इसीलिए कहा जाता है। तो जितना हम निश्चय बुद्धि आत्मा बनकर बाबा के बच्चे रहते हैं, उतना नशे के जीवन जीते हैं, ईश्वरीय नशा, उतना ईश्वरीय रस में डूबे हुए रहते हैं, अनुभूतियों के साथ इस ईश्वरीय जन्म को बिताते हैं, सारोवार रहते हैं। आज गुलाब जामुन भी सबको कब अच्छा लगता है, जब वो रस में डूबा हुआ होता है। गुलाब जामुन भी कहें और गुलाब जामुन मिले भी और उसमें रस ना हो तो अच्छा लगेगा? रस में डूबा हुआ ही अच्छा लगता है। तो हमारा ये ईश्वरीय जन्म जो हमें मिला, ये ईश्वरीय जीवन जो मिला, ये ईश्वरीय रस में डूबा हुआ होना चाहिए, सारोबार रहना चाहिए। जो दूसरे अनुभव करें वो सबको महसूस हो, वो ही सबको प्यारा लगेगा। कोई भी मायावी आकर्षण, मायावी रस होना नहीं चाहिए, वो अपनी तरफ खींच ही नहीं सकते। तो ऐसा ईश्वरी रस से भरपूर सारोवार जीवन जो खुद को भी प्यारा लगे, और दूसरों को भी प्यारा लगे। जिसको बाबा कहते हैं कि संतुष्ट रह करके, सर्व को संतुष्ट करके चलना है, संतुष्टता ही संपूर्णता है। बहुत संपूर्णता की अवस्था को प्राप्त करने के लिए, अपनी स्थिति को संपन्न बनाने के लिए संतुष्टता बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो खुद के प्रति संतुष्टता। अगर बाबा के हम बच्चे बने और बाबा के बताए हुए श्रीमत का पालन नहीं करेंगे, नियम मर्यादाओं में स्वयं को नहीं चलाएंगे, तो खुद को ही प्यारे नहीं लगेंगे, खुद से ही संतुष्ट नहीं होंगे। भले हम ऊपर से कुछ भी दिखाएं, पर अंदर से संतुष्ट नहीं होंगे। खुद को खुद के प्रति आएगा, क्या हम ज्ञान में तो चल रहे हैं, हम चाहते तो बहुत कुछ हम कर ही नहीं पाते हैं। अंदर से खुद को तो नहीं छिपाएंगे ना। दूसरों को हम भले कारण कुछ भी दे देंगे, इस कारण से ये हुआ, इस कारण से वो हुआ। आज कोई मुरली क्लास में नहीं आ पाता है, या कोई बाबा के नियम मर्यादा धारणाओं पर नहीं चल पाता है, उससे आप बात करो तो वो कई कारण दे देता है, हजारों। मुरली क्लास में नहीं आने के एक बार किसी ने बहाने बताए थे, निकाले थे सबने मिलकर, तो 1500 बहाने निकल गए थे। कितने? 1500 बहाने नहीं आने के। लेकिन जिसको आना है उसको कोई बहाना नहीं। इसलिए हमें बहाने देकर के किसी को टाल देना, वो एक अपने लिए खतरा है। न खुद संतुष्ट रहेंगे, न दूसरे को संतुष्ट कर सकेंगे। इसलिए हम खुद के प्यारे बने, खुद से संतुष्ट रहें, इसके लिए हमें हर नियम मर्यादा, बाबा की बताई हुई सब धारणाएं और श्रीमत का पालन करके चलना होगा, जो हमारी बड़ी बड़ी दादियों ने किया वो ही हमें करना है। बड़ी दीदियां भी आज हमारे सम्मुख हैं, उनको भी हम देख रहे हैं कैसे बड़ी दादियों को फॉलो करते हुए आज वो दादी के समान बनकर आज पूरे यज्ञ को चला रही हैं। आज मुन्नी दीदी हैं, आज सभी उनको बहुत प्यार से, नाम मुन्नी दीदी हैं, लेकिन आज वर्तमान समय वो कितनी बड़ी हमारी दादी प्रकाशमणि जी की जगह उनकी जैसी पालना हम सभी की कर रही हैं। सभी महसूस भी करते हैं कि पूरे यज्ञ को कैसे वो पालना दे रही हैं, कैसे संभाल रही हैं, कैसे सजा रही हैं, कैसे संवार रही हैं, कैसे यज्ञ आगे बढ़ता जा रहा है, समय आगे बढ़ता जा रहा है, तो अब हमें क्या करना है। तो हमें सबको अपने जीवन में अटेंशन रूपी चौकीदार जरूर रखना चाहिए। आज किसी के परिवार, किसी के घर में अगर चौकीदार लगा हुआ हो ना, तो कोई डर नहीं रहता है। कुत्ते भी बाहर बहुत घूमते रहेंगे, अगर चौकीदार होगा तो वो अंदर घुसने का डर नहीं है। तो ऐसे ही माया रूपी कुत्ता, तो कहते हैं पांडवों के साथ कुत्ता लास्ट तक था, तो माया तो है ना हमारे साथ। लेकिन अटेंशन का चौकीदार अगर आपने रख रखा है अपने जीवन में, तो माया रूपी कुत्ता अंदर आ नहीं सकता। फरिश्ते को तो माया की कोई भी चीज, माया भी मनुष्य, माया भी चीज टच भी नहीं कर सकती, वार भी नहीं कर सकती, टच भी नहीं कर सकती। तो इसलिए ऐसा आज हम ब्राह्मण जीवन में आ गए, पहले हमें ये चेक करना है कि हम फुल ब्राह्मण बन गए हैं, पक्के ब्राह्मण बन गए हैं, जैसा बाबा चाहता है वैसे हम ब्राह्मण, एडाप्टेड ब्राह्मण, पक्के ब्राह्मण हैं या एडाप्टिंग ब्राह्मण हैं। एक एडाप्टेड होते हैं, एक एडाप्टिंग होते हैं। एडाप्टेड माना गोद में आए बाबा के, भगवान की गोद का प्यार का अनुभव करते हुए, प्यार में सारोबार होते हुए, बाप समान बनकर बाप की दिल रूपी डिब्बी में बैठकर चल रहे हैं। और एडाप्टिंग, वो बच्चे तो बन गए, बाबा के तो बन गए, लेकिन संपूर्ण नियम मर्यादाओं का पालन चाहते हुए भी कभी करते हैं, कभी नहीं करते, कभी ऊंचे कभी नीचे, स्थिति डामाडोल हो जाती है। वो एडाप्टिंग कहलाते हैं। हम तो बाबा की वो गोद के एडाप्टेड ब्राह्मण हैं, जो बाप के प्यारे हैं, योगी बच्चे हैं, जिनको बाबा कहता है मेरे नैनों के नूर हैं, मेरे दिल की डिब्बी में बैठे हैं। गुलजार दादी थी हमारी, बहुत सहज पुरुषार्थ बताती थी, एकदम इजी, बाबा को दिल रूपी डिब्बी में बिठा लो, आपको खुद बाबा की दिल में बैठ जाओ बस। अब बाबा को याद करने का टाइम नहीं मिलता तो दादी कहती थी पानी तो पीते हो, भोजन तो करते हो, उस समय बाबा को याद करो। पानी भी कितनी बार पिया, उतनी बार बाबा को याद किया। तो ऐसी दादियां हम सबको स्मृति में रहती ही हैं, हमें उनके समान बनना है। ओम शांति।
सभी एक हाथ की ताली से एक हाथ हिला करके आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत थैंक्स करें, धन्यवाद करें। थैंक्स ममता दीदी जी, आपने इतने सुंदर सहज तरीके से हम सभी को न्यारी और प्यारी फरिश्ता स्थिति हम कैसे बनाए, आपने बहुत सहज तरीके से हमें समझाया है। और दीदी जी के लिए कहना चाहूंगी कि हम जब लोगों से मिलते हैं तो रिश्ते बनते हैं, जब हम लोगों से मिलते हैं तो रिश्ते बनते हैं, और आप जैसे दीदियों से और बाबा से मिलते हैं तो हम फरिश्ते बनते हैं, हम फरिश्ते बनते हैं। तो आज दीदी जी का हमने क्लास सुना, कैसे हम कमल पुष्प समान अपनी न्यारी और प्यारी स्थिति बनाए, हम संसार में रहे मगर हम में ना संसार हो। साथ ही साथ बाबा का प्यारा बनने के लिए दीदी जी ने कहा कि गुणों को स्वरूप में लेकर हर कार्य करेंगे तो बाबा की गोद का हम अनुभव कर पाएंगे। साथ ही साथ फरिश्ता स्थिति बनाने के लिए हमें अपनी दादियों के जीवन को देखना है, पढ़ना है, सुनना है, उन्होंने कैसे प्रैक्टिकल हर कार्य करते हुए फरिश्ता स्थिति में लाइट माइट रह करके हर कार्य किया, तो हम भी दादियों के जीवन को साथ ही साथ दीदियों को देखते हुए जल्द ही उस संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करेंगे, यही विश्वास दिलाते हुए दीदी जी को पुनः धन्यवाद। ओम शांति।